एजाज़ खान और उसका बेटा फ़ैज़ खान दुबई में अपने घर पर थे। वो दोनों अपने आदमियों के साथ रोहन को लेकर मीटिंग कर रहे थे ताकि रोहन के मरने के बाद उससे जुड़े लोगों को रास्ते से हटाया जा सके। उन्होंने देखा रोहन ने अपनी टीम में आदमियों के साथ दो लड़कियों को भी शामिल किया था, जिनमें एक फलक थी तो दूसरी आयु। फलक से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही फ़ैज़ ने आयु को देखा उसकी नज़र ने उस पर थम सी गई थी। खान अपने आदमियों को काम समझा रहा था। उसने सख्त आवाज़ में कहा, सबको पकड़कर ढूंढो और किसी से कुछ भी पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उड़ा दो। दोनों लड़कियों का क्या करना है? वहाँ खड़े एक आदमी ने पूछा। खान ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और चिल्लाकर कहा, करना क्या है? ये कैसा वाहियात सवाल पूछ रहे हो? हमारे काम में हम लड़का लड़की का अंतर नहीं करते हैं, दोनों लड़कियों को भी मार दो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार इस तरह का काम करना पड़ रहा है। तुम इतने बरसों से हमारे लिए काम कर रहे हो, आगे से ऐसा सवाल मत पूछना। उस आदमी ने सिर नीचा कर लिया। उसने फिर फ़ैज़ की तरफ देखा, जिसकी नज़रें अभी भी आयु की तस्वीर पर अटकी थीं। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। खान के सामने बोलने की हिम्मत वैसे भी किसी की नहीं होती थी। खान ने उसकी नज़रों को फॉलो किया। उसने भी इस बात को नोटिस किया कि फ़ैज़ खोई हुई नज़रों से आयु को देख रहा है। खान ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, जो ऑर्डर दिया है वही करना है। नहीं पापा, अचानक फ़ैज़ बोला। भले ही उसका ध्यान आयु की फ़ोटो में लगा था, पर उसके कान चौकन्ने होकर आसपास की सारी बातें सुन रहा था। फ़ैज़ ने नज़रें ऊपर उठाईं और खान की तरफ देखकर कहा, इस वाली लड़की को हम तरीके से देख लेंगे, दूसरी को आप मार सकते हो। खान ने उस वक्त फ़ैज़ को कुछ नहीं कहा और उस आदमी को इशारे से वहां से जाने को कहा। बाकी के लोग भी वहां से निकल चुके थे। अब उसे कमरे में सिर्फ फ़ैज़ और खान ही बचे थे। सबके जाते ही खान ने फ़ैज़ से सर्द आवाज़ में कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो, मैं अपने काम में तुम्हारी अय्याशियों को आने नहीं दे सकता। वैसे भी मुझे आरफ खुराना से बदला लेना है और इससे बेहतर मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। हम आपके बदला लेने से रोक भी नहीं रहे हैं पापा, हमने बीच का रास्ता निकाला है जिससे आपका काम भी हो जाए और हमारी चाहत भी पूरी हो सके। सोचिए, आरफ खुराना इस लड़की से कितना प्यार करता होगा जो उसने माहिरा लूथरा को छोड़ दिया। अगर ये लड़की मेरी बाहों में हुई तो वो वैसे भी टूट जाएगा, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, फ़ैज़ ने सीधे सीधे कहा। एक ही नज़र में उसे आयु इतनी पसंद आ गई थी कि उसने पहली बार खान की बात मानने से मना कर दिया था। ये खान के लिए अच्छी बात नहीं थी। उसने सख्त आवाज़ में कहा, कितनी बार समझाया है कि काम के बीच में इमोशंस को मत लेकर आया करो, ऐसी हज़ार लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, फिर क्या इसे देखकर बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हो? बच्चे नहीं रहे हैं अब हम, और ना ही हमारी हसरतें अब सिर्फ खिलौने पाने की हैं। जब हमने कह दिया कि इस मामले को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे तो हम देख लेंगे, अगर इस लड़की को कोई खरूच भी आई तो आप अच्छे से जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, फ़ैज़ ने सीधे सीधे कहा और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद खान ने स्क्रीन की तरफ देखा जहां अभी भी आयु की फ़ोटो थी। उसने उसे सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो पहले वो आरफ खुराना तो अब हमारा बेटा पागल हो गया है? हमें फ़िलहाल के लिए इसकी बात माननी ही होगी, बाद में इसे हम इतनी बुरी मौत देंगे कि इसकी और आरफ खुराना दोनों की रूह तक काम जाएगी। फ़ैज़ के आगे खान ने फ़िलहाल चुप्पी साधने का सोचा। उसने अपने आदमियों को आयु को छोड़कर बाकी सारे लोगों को मारने को कहा जो रोहन के ज़रिए उनसे जुड़े थे। आयु गौरवी जी के साथ अपने घर पर गई हुई थी। आयु खुद ही ड्राइव कर रही थी, इसलिए उसने कबीर को साथ आने से मना कर दिया था। वहीं कबीर आरफ के साथ घर पर ही था। दोनों चुपचाप बैठकर डिनर कर रहे थे। कबीर का गौरवी जी के बिना तो आरफ का आयु के बिना मन नहीं लग रहा था। दोनों बेमन से खाना खा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद कबीर ने कहा, आपने खान के मामले में क्या डिसीजन लिया है? जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो ज्यादा टाइम तक चुप नहीं रहने वाला नहीं है। उसकी चिंता करने की जरूरत है कबीर, लूथरा कब काम आएगा? वैसे भी माही यहां नहीं है तो उसके ना होने का फायदा उठाना तो बनता है, आरफ ने जवाब दिया। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने आगे कहा, खान और उसके बेटे की लड़कियों के मामले में इमेज अच्छी नहीं है, हमें मैम को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा सर। आरफ भी कबीर की बातों को अच्छे से समझ पा रहा था। उसने जवाब में कहा, इसी बात की फिक्र है मुझे, आयु को कहूंगा तो वो अलग से गुस्सा करूंगी, हमें जल्द से जल्द नाहर लूथरा से बात करनी होगी। कबीर ने उसकी बात पर हामी सिर हिलाया। उनका आयु के लिए परेशान होना जायज था। डिनर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं। दूसरी तरफ ओबेरॉय हाउस में आज काफी चहल पहल मची थी। आयु के घर आते ही जय और तारा अपनी सारी नाराजगी भूल गए। वो लोग काफी देर तक आपस में बातें करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए डिनर करने रात को देर से ही बैठे थे। तारा ने आयु को सर्व करते हुए कहा, वैसे तो तुम खुद डॉक्टर हो, लेकिन हमें तुम्हें हेल्दी फूड खाने के लिए समझाना पड़ता है।
तुम्हारी चॉइस का ध्यान रखते हुए आज मैंने सारा जंक ही बनवाया है। आयू ने उनकी तरफ हल्की सी स्माइल पास की और जवाब में कहा, थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे नहीं पता था तुम्हें जंक फूड खाना पसंद है। आरव अपनी डाइट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहता है, यहाँ तक कि घर पर भी बाहर का खाना नहीं आने देता और कुक को स्पेशली बोलकर रखता है कि कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं बनाया जाए, गौरवी जी ने हंसकर जवाब दिया। उनकी बात सुनकर सिमरन ने कहा, कोई खास बात नहीं है दादी, यहाँ डैडी जी और मम्मी जी भी खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, यहाँ भी आयु को हेल्दी फूड ही खाने को मिलता था। हाँ, आज का मेन्यू देखकर तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि तारा ने आयु के लिए ये सब बनवाया है। जय ने कहा, वो क्या है ना पापा, आज की स्पेशल गेस्ट आयु है, इसलिए हमें थोड़ा कम भाव मिलने वाला है। कोई बात नहीं, आज आयु की पसंद का खाना खा लेते हैं, रुद्र ने आयु को परेशान करते हुए कहा। उनके घर का माहौल काफी अच्छा था। जय और तारा भी अपनी नाराजगी भूलकर आयु के रिश्ते को अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके थे। आरव जैसा भी था लेकिन वो आयु का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था। फिर जय जी ने हर एक फैमिली मेंबर के चेहरे की तरफ देखा तो सब खुश दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें आरव की कमी खल रही थी तो उन्होंने कहा, आरव भी आ जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। वो भी आना चाहता था पापा, लेकिन उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसे पैन किलर देकर आई थी और इंजेक्शन भी लगाया था। आई होप उसे नींद आ गई होगी और उसने टाइम से खाना भी खा लिया होगा, आयु ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल थी। आयु ने इस बात को नोटिस नहीं किया लेकिन उसकी बातों में आरव के लिए फिक्र झलक रही थी। अच्छा, तो मिसेस खुराना को अपने मिस्टर खुराना की याद आ रही है, गौरवी जी ने आयु को परेशान करने के लिए कहा तो आयु ने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली। उनकी बात सच भी थी, आयु जब से आई थी उसे भी आरव की कमी खल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल आरव का भी था, वो आयु को बहुत मिस कर रहा था। डिनर करने के बाद आरव सोने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उसे आयु के बिना नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक नींद नहीं आने पर आरव इरिटेट होकर खड़ा हुआ।
अजीब मुसीबत है यार, पास में होती है तो झगड़ा करती रहती है और आज साथ में नहीं है तो मन नहीं लग रहा, वो मुझे अकेले छोड़कर जा भी कैसे सकती हैं, आरव ने चिढ़कर कहा। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर खुद से कहा, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, अब तक तो ओबेरॉय फैमिली सो चुकी होगी, मैं आराम से उसके रूम में जा सकता हूँ, बाकी वो खुद ही हैंडल कर लेगी। आरव कन्फ्यूज हो रहा था कि वो आयु के पास जाए या नहीं। फिर आखिर में आरव ने ओबेरॉय मेंशन जाने का फैसला लिया। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले और उन्हीं कपड़ों में ओबेरॉय मेंशन जाने के लिए चला गया। आरव ने खुद की गाड़ी लेने के बजाय कैब से जाना सही समझा ताकि सुबह पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी देखकर वो पकड़ा ना जाए। ओबेरॉय मेंशन में बाकी सब सोने जा चुके थे, बस आयु जयजी के साथ गार्डन एरिया में बैठी थी। उन लोगों ने वहां कैंप फायर लगा रखी थी और बातें कर रहे थे। धीरे धीरे सबको नींद आने लगी तो सब सोने चले गए, बस जयजी और आयु ही बचे थे। आयु जयजी के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और वो धीरे धीरे उसके बालों में हाथ घुमा रहे थे। जयजी ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने शादी के वक्त तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे तुम दोनों की शादी अच्छे तरीके से धूमधाम से करवानी चाहिए थी, वैसे भी अनु के जाने के बाद तुम हमारी इकलौती बेटी रही हो। बोलते हुए जयजी इमोशनल हो रहे थे और उन्हें अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। आयु ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो बीत चुका है उसे याद करके दुखी होने का कोई फायदा नहीं है, आने वाले वक्त को अच्छा करते हैं ना, और मुझे आपके साथ में बहुत सा अच्छा टाइम स्पेंड करना है पापा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया, पर यकीन मानिए उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, उस दिन वाला वीडियो भी एडिटेड ही था। हाँ, वो मैं दूसरा वीडियो देखने के बाद ये बात समझ गया था, जयजी ने जवाब दिया और फिर उन्होंने आगे कहा, अच्छा तुम आरव को पसंद तो करती हो ना, मैंने तुम दोनों की शादी ज़बरदस्ती तो नहीं करवा दी ना। जयजी की बात का जवाब देने से पहले आयु ने एक मिनट भी नहीं सोचा, उसने जयजी के कंधे से अपना सिर हटाया और नज़र झुका कर कहा, पापा वो मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे प्यार भी करती हूँ, हमारा रिश्ता औरों जैसा नहीं है, बहुत अलग है, पर वो मेरी बहुत केयर करता है। हाँ, वो मुझे अच्छे से दिख रहा है कितनी केयर करता है, मैं अभी भी उससे नाराज़ हूँ कि वो यहाँ नहीं आया और तुम्हें यहाँ दादी के साथ में भेज दिया। जयजी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने से आ रहे आरव पर पड़ी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड से बात करके धीमों कदमों से चलकर अंदर आ रहा था। आरव को इतनी रात वहां देखकर उनके मन के सारे डाउट्स खत्म हो गए और वो स्माइल करने लगे, जबकि आयु हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर पहले जयजी गुस्सा थे और अभी स्माइल कर रहे थे, उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया।